ओम शांति। हैप्पी मकर संक्रांति। आज गाड़ी थोड़ी ढीली चल रही है ये? सभी उड़ गए क्या वतन में? फरिश्ते? अच्छा, अमृत वेले के योग में सभी थे? सभी फरिश्ते थे? सभी? दो हाथ उठाना पड़ेगा, खुशी की ताली। क्योंकि हम सब फरिश्ते हाजिर थे। कैसा रहा सबका अनुभव जी? बहुत अच्छा लगा। अब इसमें हमें तीन बातें देखनी है। आज जो भी योग किया, एक तो आपको अलग अलग स्थान पर फरिश्तों को क्या करना पड़ा, अलग अलग स्थान पर जाना हुआ ना। कहाँ कहाँ गए? पहले हॉस्पिटल में गए, फिर भूकंप भूकंप ग्रस्त एरिया में गए, फिर जी ब्राह्मण परिवार को सशक्त सस्टेन करने के लिए, और हाँ, तो एक बहुत अच्छा मेडिटेशन जिसमें तीन बातें देखनी है। एक तो जो स्थान पर हमें जाना था, क्या वहां हम पहुंचे, रियली पहुंचे? दूसरा ये देखना है कि जो दृश्य हमें एग्जैक्ट, जैसे आज बाबा ने कहा ना, सब कुछ एक्यूरेट होना चाहिए, तो एक्यूरेट मेरे सामने आया, मैंने उसको अच्छी तरह से विजुलाइज किया, हुआ मेरे से? और तीसरा ये देखना है कि भावनात्मक रूप से हम इसमें कितने जुड़े रहे। एक है सिर्फ चित्र को देखना तर्क और बुद्धि और विवेक से करना, और दूसरा है भावनात्मक रूप से कैसे हम जुड़े। तो हर समय मनसा सेवा करते हुए ये तीन बातों का हमें क्वालिटी चार्ट चेक करना है। ठीक है, हम सब बहुत लकी हैं। आप सब ने कैलाश पर्वत देखा है, सुना है उसके बारे में? क्या है उसकी विशेषता? तपस्या के साथ क्या हुआ जी? क्या प्राप्ति मिली? स्वयं भगवान के दर्शन। और अगर सोचिए खुद कैलाश पर्वत आपके पास आ जाए तो क्या हो जाए? तो आज हम सबके सम्मुख स्वयं कैलाश दीदी जी पधारे हैं, बड़े ही प्यार से हम सब दिल की उमंग और उत्साह से दीदी आपका आज की इस ज्ञान सरोवर की कर्मयोगी फरिश्ता की मौन तपस्या भट्टी में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी हम सबके साथ साथ जब से भट्टी का प्रारंभ हुआ तब से है ही है। वास्तव में दीदी का बहुत ही तीव्र शुभ संकल्प था कि मैं पूरी भट्टी अच्छी तरह से करूं, और इसी ख्याल से उनके संकल्प से ही शायद मैं भी यहाँ पर आपके बीच में हूँ। लेकिन किसी कारण से जहाँ वो हिमाचल प्रदेश गए थे तो वहां पर किसी आत्मा ने देह त्याग किया, इसलिए उनको रुकना पड़ा, और इसीलिए कल ही दीदी हम सबके बीच स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो साथ में ही थे दीदी, लेकिन स्थूल रूप से कल ही पहुंचे हैं। आज हम सब भगवान का दर्शन होता है ना कैलाश पर्वत पर जाने से, तपस्या करने से, तो आज हम भगवान का प्यार, भगवान की पालना, खुद बाबा की पालना, मम्मा की पालना जिन्होंने ली है, आप सब चाहेंगे ना उनकी बातें सुनना, अनुभव सुनना। इसीलिए हम बहुत बहुत तहे दिल से फिर से एक बार आदरणीय कैलाश दीदी जी का, जिन्होंने 1958 से, कितने साल हुए भाई जी गिनती कर लीजिए, 58 से आपने बाबा को कितना साल हो गया जी, अच्छा इतने सारे? आप सोचिए दीदी, आपके पास कितना खजाना जमा है हा? तो हमको लेना है ना, इसीलिए मैं जल्दी माइक बंद करती हूँ। हम सभी जो दीदी के पास प्रैक्टिकल अनुभव का खजाना है वो प्राप्त करेंगे। आदरणीय कैलाश दीदी जी, आप गांधीनगर में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन अभी वर्तमान समय हम सबके साथ हैं। दीदी जी के स्वागत में एक छोटा सा गीत पेश कर रहे हैं, जयपुर से पधारे हुए बहन। आपका शुभ नाम? अलका बहन जी, आइए।
ओम शांति। समस्त ईश्वरीय परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी मकर संक्रांति।
चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया को देख देख जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली परम धाम मीठे बाबा के पास, सारी दुनिया को छोड़ मैं तो चली रे। चली चली रे पतंगमा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे। बाबा के किरणों में लहराए, बाबा की किरणों में लहराए, जैसे कोई नशा चढ़ जाए। बाबा किरणों में लहराए, जैसे कोई नशा चढ़ जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए सावरिया की गली रे। चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे। तिल गुड़ हम आज खाए, मिलकर संक्रांत मनाए। तिल गुड़ हम आज खाए, मिलकर संक्रांत मनाए। ऐसा दिन जुड़ी आए, हम ज्ञान सरोवर आए, मिलकर भक्ति का लाभ उठाए रे। चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे। योग भक्ति में हम है आए, फरिश्ता बन कर हम जाए। भक्ति में हम है आए, फरिश्ता बन कर हम जाए। हमारी चाल ऐसी हो जाए, प्रत्यक्ष बाबा हो जाए, ऐसा काम मिलकर हम कर जाए रे। चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली परम धाम मीठे बाबा के पास, सारी दुनिया को छोड़ मैं तो चली रे। चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे, चली चली रे मैं आत्मा चली रे। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति। वैसे आप सबने अनुभव तो सुना ही होगा, हर एक आत्मा का अपना अपना अनुभव होता है, और बहुत अच्छी प्रेरणादायक होते हैं अनुभव। तो आज हम भी सुनाते हैं, बहन ने सुनाया 58 में आए, बहुत छोटे से ही थे, माताजी पिताजी भी आते थे, उनके साथ साथ हम भी आए। बहुत ही अच्छी तरह से पहले तो बाबा को लेटरों द्वारा ही मिले, और फिर जब बाबा मामा मधुबन में थे तभी ही आना हुआ, घर से ही आए थे। उस समय भी बहुत अच्छी तरह से मम्मा बाबा से मिलना हुआ, और हिमाचल की पार्टी थी, बाबा को दीदी ने परिचय दिया, बाबा ये हिमाचल की पार्टी है, पहाड़ी भाषा जानते हैं सब। तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, अच्छा पहाड़ी बच्चे हैं तो जी बाबा, तो बाबा ने बताया कि एक तो पहाड़ी में बोल के दिखाओ और दूसरा पहाड़ी भाषा में गीत गाओ और पहाड़ी डांस करके दिखाओ। तो हमारे को पहाड़ी डांस तो नहीं आता था, लेकिन फिर बाबा ने कहा तो पहाड़ी गीत भी गाए थे। पंजाब में रही, पंजाब से जब आई तो पंजाबी गीत भी बना करके, उस समय इतनी अच्छे गीत गाने वाले या कोई बजाने वाले या टेप ऐसा कुछ होता नहीं था, सिर्फ रिकॉर्ड बजाते थे। और उस समय हम लोग इतने बुद्धिशाली भी नहीं थे जो अच्छे अच्छे गीत बनावे और बाबा मम्मा के आगे गाएं, लेकिन जो फिल्मी रिकॉर्ड होते थे वो हमें ये पता नहीं था कि ये कोई फिल्मी रिकॉर्ड है या फिल्म क्या चीज होती है, वो उस समय ये ज्ञान नहीं था। पर दीदियां ऐसे बोलती थी कि ये जो रिकॉर्ड बजा ना, इसके ऊपर बाबा का गीत बनाओ, इस गीत में बाबा मम्मा का नाम आना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए। तो ठीक है, परंतु ये फिल्मी से चेंज कर रहे हैं ऐसे कुछ मालूम नहीं था। तो ऐसे करके हर रोज बाबा किसी को भी खड़ा कर देते थे कि अच्छा बच्ची आज आप गाइए, आज आप। तो ऐसे से हर कोई को भी खड़ा करते थे और हर एक तैयार भी रखते थे। ऐसे बाबा से खूब मम्मा से पालना मिली। हम जब ज्ञान में आई तो मैं बोलती नहीं थी और वैसे बहुत कुछ करने भी नहीं आता था, शांत स्वभाव था। अगर कोई बुलावे तभी भी मैं नहीं बोलती थी, अभी तक का भी ऐसा ही है। जब मुझे कोई बुलाएगा तभी मैं बोलती हूँ, बाकी मैं सामने से कुछ पूछूं या बात करूं ऐसा कुछ नेचर नहीं है। मेरे को लगता है मैं इसलिए नहीं बोलती थी कि मुझे ऐसे मन में रहता था कि ये सब लोग पढ़े लिखे हैं और मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी से बोलने का नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, ये मेरे मन में थोड़ा बैठा हुआ होगा ऐसा मुझे लगता है। तो बाबा के पास जब यज्ञ में हिमाचल से रहने के लिए सेंटरों पर आ गई, तो मैं एक सेंटर से अगर दूसरे सेंटर पर भेजने के लिए मुझे कोई कहे तो मैं ऐसा सोचती थी कि मैं दूसरे सेंटर पर नहीं जाऊं। मैं इसलिए सोचती थी, मेरी जो कमी थी कि मैं अनपढ़ हूं, इसलिए मैं सोचती थी कि इन सबको तो पता है मैं अनपढ़ हूं, लेकिन दूसरे सेंटर पर जाएंगी तो वो बोलेंगे मुरली सुनाओ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं अनपढ़ हूं या मुझे मुरली पढ़ने नहीं आती है, तो इसलिए मुझे यहीं रहना है। लेकिन पंजाब के सेंटरों पर तो रही, होशियारपुर, जलंधर, थोड़ा समय अमृतसर, तलवाड़ा। लेकिन जब मैं तलवाड़ा से अचानक पंजाब से, मुझे बहुत समय तक मधुबन नहीं आना हुआ था, लेकिन फिर एक भाई ने मेरी टिकट ले ली थी, बहुत लगर 75 वर्ष के दादा थे, उन्होंने बोला मुझे कैलाशबेन को लेके जाना है। तो मैं फिर, मेरे को दीदी बुलाने आए अपने तलवाड़ा में, और फिर मैं मधुबन आई। जब मधुबन में आई, बाबा को मिली, बाबा को परिचय दिया कृष्णा दीदी ने कि बाबा ये हिमाचल प्रदेश की कन्या है, बहुत भोली है, बहुत अच्छी दिल से सेवा करती है और बहुत शांत है, बोलती नहीं है, और बाबा ये ध्यान में भी जाती है तो, और अनपढ़ है। बाबा ने बोला अच्छा, ये बच्ची ध्यान में जाती है? तो दीदी ने बोला जी बाबा। तो बाबा ने फिर जब दीदी रास्ता बता रही थी कि यहाँ से बाहर निकलो, तो उसी समय बाबा ने बोला, बच्ची कल सुबह को 10:30 बजे बाबा की झोंपड़ी में बाबा को मिलने आना, पर बच्ची सबको लेकर के नहीं आना, तुम अकेली आना। मैंने कहा जी बाबा। मेरे को है ना अनपढ़ थी वो तो बराबर, लेकिन मुझे घड़ी देखने भी नहीं आती थी। तो 10:30 कब बजते हैं, पर बाबा ने बोला था सुबह के टाइम। तो मेरा स्वभाव मन में, किसी से पूछूंगी नहीं भैया 10:30 या बहन जी 10:30 बजे कब बजते हैं, तो ये पूछने का नहीं। जब हम मन सुबह को क्लास किया बाबा का, फिर नाश्ता किया और फिर दीदी रूम में गई, तो दीदी के ही साथ हम भी रूम में गई। रूम में मैं बैठी हुई थी, दीदी कोई पार्टी को मिल रही थी। तो दीदी को 10:15 बजे हमारी ओर ध्यान गया और दीदी ने बोला, अरे कैलाश तुम बैठी हो। मैंने कहा जी दीदी। अरे उठ के जल्दी जल्दी फटाफट कपड़े धुलाई करो, सब बहनों के कपड़े इकट्ठे करके लेके जाओ। जी, फटाफट सबके कपड़े इकट्ठे गए लेंड करके, और जब धोने लगी, वो बाथरूम इतने छोटे छोटे ट्रेनिंग जो बने हुए हैं, ट्रेनिंग वाले रूम, उसमें बाथरूम बहुत छोटे और उसमें जीरो का गोला होता था। पर आज जैसे जीरो वाला नहीं, असल जीरो। तो अंधेरे में पता नहीं चला, यहाँ से बहुत गंदे थे कपड़े। तो फिर जब ऊपर सुखाने गई तो देखा बाएं, वो ट्रेन में तो हम लोग रिजर्वेशन तो लेते नहीं थे, बिगर रिजर्वेशन के डब्बे में बैठ करके मुसाफरी करते थे। तो यहाँ का तो रंग रूप भी पता नहीं चलता था, इतने मैले हो जाते थे पंजाब से आते आते। तो मैं बहुत अच्छी तरह ऐसे से जोर जोर से फिर से नीचे ला करके धोने लगी। लगभग 11:30-12 बज रहे थे और बाबा कहीं इंतजार करता होगा, और मैं तो धो रही थी कपड़े, मुझे तो पता नहीं 10:30 हुए कि नहीं हुए। फिर जब मैं धो रही थी तो बाबा, ईशुबेन, लच्छू दीदी और संतरी दीदी, बड़ी दीदी, सब बाबा के साथ चक्कर लगाते लगाते शांति स्तंभ की जो जगह है, उस समय शांति स्तंभ तो नहीं था, लेकिन वो शांति स्तंभ की जगह पर बाबा जब आए, तब लच्छुबेन ने बोला, बाबा कैलाश तो कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला, बच्ची आप आवाज नहीं करना, चुप रहना। तो चुपचाप सब आई और बाबा ने मेरी आंखें बंद कर दी। जब आंखें बंद की तो मैं बड़ी परेशान होने लगी, मेरे को ऐसा था कि कौन है जिसने आंखें बंद कर दी, मेरे को जल्दी बाबा के पास जाना है, 10:30 बजे बाबा के पास जाना है। लेकिन क्या हुआ कि मैं बोलूं, राज दीदी है, कृष्णा दीदी है, आशा दीदी है, सब बहनें जितनी आई थी सबके नाम लिए, पर कोई आंखें ही नहीं खोले, और मैं बरोबर परेशान हो रही थी। फिर मैं ना बहुत परेशान होकर के बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और फिर ऐसे मेरे को अपनी ओर घुमाया और बाबा ने बोला, अरे बच्ची सब दीदारियों को याद करने के बाद लास्ट बाबा याद आया। तो फिर तो मैं तो ठंडी रह गई कि आश्चर्य में, ये सचमुच बाबा है, मैं सपना देख रही, एकदम मैं तो वहां की वहीं, कहां हूं मैं ये पता नहीं चलने लगा। फिर बाबा ने ऐसे करके हाथ घुमाया और जो मेरे हाथ साबुन वाले थे, तो फिर वो लेकर के ऐसे ऐसे वो धो रही थी, तो ऐसे कैसे मैंने तो रख दिया था। तो बाबा ने हाथ धुलाई कराए, अपनी रुमाल से पोंछे और ऐसे हाथ पकड़ करके ले चले। रास्ते में चलते चलते बाबा ने पूछा, बच्ची। जी बाबा। बच्ची कपड़े धोती धोती तू क्या सोचती थी। बाबा को बोला, बाबा मैं यही सोच कर रही थी कि मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे झोंपड़ी में आ जाने वाली थी। तो बाबा हंसने लगे। बाबा ने बोला, अरे बच्ची, 10:30 के आवी तो 11:30-12 होने जा रहे हैं। बाबा को पता है, मेरे को ये मालूम नहीं था कि पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। तो मैंने बाबा को बोल दिया कि बाबा मैं 10:30 पहुंच ही जाने वाली थी। तो बाबा फिर हंस पड़े। बाबा ने बोला, अरे बच्ची, पहले 10:30 बजते हैं फिर 11:30। फिर मेरे को लगा मैं भूल कर रही हूँ, चुप रही। फिर तो बाबा झोंपड़ी में ले जा करके बिठाया, सभी दीदियां दादियां भी बैठी और हमारे को बाबा ने ऐसे आगे बिठाया। अच्छा बच्ची बैठो। बैठ गई। बाबा ने बोला, बच्ची कल तेरी टीचर ने बताया था कि तुम ध्यान में जाती हो। जी बाबा। तो अभी जाओ बाबा के पास और देख के आओ कि मेरे में और जो तुम ध्यान में बाबा को देखती है उसमें क्या फर्क है। तो और बाबा की भी याद देना बच्ची। बाबा को बोला, जी बाबा। तो बाबा दृष्टि देते रहे, चलो बच्ची चलो, ऐसे से बाबा ने किया। तो थोड़ा समय दृष्टि देने के बाद बाबा ने ऊपर भेजा। जब वापस नीचे आई तो बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची बतन में जाके आई। जी बाबा। देखा बच्ची बाबा को? जी बाबा। बाबा की याद दी थी बच्ची? जी बाबा। तो बाबा को जानना था कि ऊपर बाबा को जो देख करके आई उसमें और मेरे में क्या फर्क है। फिर बाबा ने जब ये पूछा कि बच्ची ऊपर ध्यान में जो बाबा को देखती है वो कैसे थे, तो मेरे को ना बहुत अच्छी समझ तो नहीं थी बाबा से कैसे बातें करनी चाहिए, और भाषा भी हमारी पहाड़ी थी। तो उस समय मैं पंजाब से आई थी, तो पहाड़ी, पंजाबी और हिंदी तीन मिक्स भाषाएं बोलती थी। तो बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा बोले, बच्ची मैं? तो मेरे को बोलने नहीं आया, मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बाबा ने, बड़ी दीदी वहां बैठी हुई थी, बोले, अरे मुट्ठी चुप, क्या बोल रही हो? तो मैं चुप हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ये तो बच्ची जो है, इस बच्ची का क्या पार्ट है, कैसा पार्ट है, वो देखने के लिए इस बच्ची को भेजा है। बाकी बाबा के पास तो बहुत सारी संदेशियां, बाबा भेज सकता है। तो अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। जी बाबा। तो बच्ची ऊपर वाले बाबा ने पैंट शर्ट पहना था ना? तो क्या पहनना था, कैसे कपड़े पहने थे? बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे। तो तू तो कह रही है बहुत अच्छे थे बाबा, तो कैसे अच्छे थे? बाबा को बोला, बाबा ऊपर वाले बाबा से लाइट लाइट निकलती थी, आपसे नहीं निकल रही है। तो बाबा ने बोला, अच्छा बाबा बतावे क्यों नहीं निकलती है? तो मेरे को तो इतनी अक्ल नहीं थी कि ये जानना चाहिए, बताओ तो ये ठीक है, नहीं बताओ तो ये ठीक है, ऐसी मेरी स्थिति थी। तो फिर बाबा ने बोला, देखो बच्ची, जैसे तुम बच्चे सभी बाबा के स्टूडेंट हो ना, तो स्टूडेंट जो होता है वो कुछ न कुछ लक्ष्य रखता है, और लक्ष्य रख करके फिर पुरुषार्थ करता है, और वो मेहनत करते करते फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ऐसे बाबा भी बच्ची तुम बच्चों की तरह पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे, ठीक है? तो फिर बाबा ने बताया कि बच्ची बाबा की वो संपूर्ण फाइनल स्टेज देख करके आती है, इसीलिए उससे लाइट लाइट दिखाई देती है। बाबा भी धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे। भले बाबा। फिर बाबा ने बोला, बच्ची तेरा इतना अच्छा पार्ट है, तो बच्ची तू पंजाब में क्यों रहती हो? तो बाबा को बोला, बाबा तो मैं कहाँ रहूं? तो बाबा ने बोला, बच्ची बाबा जहां भेजे वहां जाएंगी? जी बाबा। फिर बाबा को बोला, बाबा जहां भेजेंगे वहां जाऊंगी, पर बाबा एक बात बताऊं? बोला, बोलो। बाबा मुझे घर के नजदीक नहीं रखना। बाबा ने बोला, बच्ची क्यों? बाबा को बताया, बाबा मेरा तो मम्मी में और बड़े भैया में बहुत मोह है, वो घड़ी घड़ी बुलाते रहते हैं, अगर वो बार बार बुलाते हैं तो मुझे जाना अच्छा नहीं लगता, और मैं नहीं जाती हूँ तो उनको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मुझे दूर भेजो, जब जरूरत पड़े तभी वो बुलावे। बाबा ने बोला, ठीक है बच्ची, अच्छा तेरे को बाबा जयपुर भेजे? बच्ची भले कहाँ है जयपुर पता नहीं, फिर भेजूं बच्ची? हाँ जी बाबा। तो बाबा ने बोला, देखो बच्ची वहाँ बहुत अच्छा म्यूजियम बन रहा है, और हठ योगियों का म्यूजियम वहाँ बना हुआ है, तो उसके सामने, हठ योगियों के सामने राज योगियों का म्यूजियम बना रहे हैं, तो उसका अंतर बताने का कि हठ योग क्या है और राज योग क्या है, तो बच्ची तुम भी जाकर के वहाँ ये सेवा करना, बाबा तेरे से सेवा कराएंगे, और बच्ची जो तुम बाबा को भोग भी लगाना। तो वहाँ जो मोहनी दीदी है अभी न्यूयॉर्क वाले, वो पहले वहाँ रहते थे, वो वहाँ से जा रहे थे दिल्ली, इसलिए फिर बाबा ने हमारे को भेजा। तो हम जयपुर में गए, फिर जयपुर में 7-8 महीने रही, फिर से बाबा ने फोन करके बुलाया, बाबा के पास गई, बाबा ने बड़े प्यार से मिलती रही थी। एक दिन बाबा ने बुलाया, बच्ची बच्ची क्या जयपुर में खुश हो? जी बाबा। अच्छा लगता है जयपुर में? हाँ जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची तुम जयपुर में रहती हो, बच्ची तू क्यों घर बार छोड़ा? तेरे को तो सब बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छा स्नेह प्यार से तेरे को चलाते थे, तू क्यों ब्रह्मा कुमारी बनी? बाबा को बोला, बाबा मुझे तो बहनें अच्छी लगी। बाबा ने बोला, और क्या अच्छा लगा? आपकी मुरली अच्छी लगी, तो बच्ची रोज मुरली पढ़ती हो? क्यों नहीं पढ़ती हो? बाबा को बोला, बाबा मुझे पढ़ना नहीं आता है। बाबा ने ऐसे हाथ खोला, बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ना तो बहुत था, क्यों नहीं पढ़ी? बच्ची पढ़ी लिखी होती तो विदेश सेवा करती, तो मेरे को तो पता नहीं देश क्या और विदेश क्या। फिर बाबा ने बताया कि बच्ची तेरी उम्र भी बहुत छोटी है। बाबा को बोला, बाबा मैं कैसे मरूंगी? मुझे मरने में बहुत इंटरेस्ट था, मुझे मरना बहुत पसंद था, मैं ये चाहती थी कि कब वो दिन आवे जो मेरा शरीर छूटे ऐसा। तो मैं बाबा को बोला, बाबा मुझे बताओ मैं कैसे मरूंगी? तो बाबा ने बताया, बच्ची तुम काम करते करते सो जाएंगी और मर जाएंगी। तो मेरे से ऐसा बोला गया कि बाबा आप मिले हैं उसकी मुझे खुशी है, पर मरने की बहुत बहुत खुशी है। तो बाबा ने बोला, बच्ची तुम सेंटर पर रहती हो ना? जी बाबा। बच्ची कोई दुख है, कोई तकलीफ है? नहीं बाबा। तो मरना क्यों चाहती हो? बाबा को बोला, बाबा मैं इसलिए मरना चाहती हूँ कि मैं जब मरूंगी ना, तो फिर मेरा दूसरा जन्म होगा, तो दूसरा जन्म लेके मैं बहुत पढ़ूंगी और फिर बहुत बहुत सेवा करूंगी। तो बाबा ने बोला, बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? जी बाबा। बच्ची पढ़ने के लिए ही मरना चाहती हो? जी बाबा। अरे बच्ची, तू मरना क्यों चाहती है? बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे को बहुत लोगों ने प्रयत्न किया पढ़ाने का, पर मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बाबा ने बोला, बच्ची बाबा तेरे को पढ़ाएंगा, पर बाबा मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। बाबा ने बोला, पढ़ना नहीं आता तभी तो पढ़ाएंगे ना बाबा। फिर बाबा बहुत मना फोर्स किया कि बच्ची शाम को आओ 4-5 बजे, उस समय बाबा लेटर सुनते हैं, सभी बच्चों के आए हुए हैं, उस समय तेरे को बाबा पढ़ाएंगे। बाबा ने काफी फोर्स किया, इसलिए बाबा के पास फिर मैं गई शाम को, और बाबा ने लिखना शुरू किया। मेरे को लगता है एक डेड लाइन बाकी थी, और उसी समय जयपुर से रुक्मणी दादी का फोन आया, जो अभी रजौरी गार्डन में है ना, उस दादी का फोन आया। दादी ने बोला, बाबा कैलाश बहन को जल्दी से जल्दी जयपुर भेज दो, यहाँ हैंड्स कम हैं और बहुत पार्टियां आ रही है। बाबा मेरे को देखते रहे, बाबा ने फोन रखा, मैं भी बाबा को देख रही थी। बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को तो जयपुर जाना पड़ेगा, और बच्ची बुला रही है। तो मेरे को मिस बहुत ऐसे हुआ कि मन में, वैसे भी मेरा ड्रामा में नूंद ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगी इस जन्म में, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वो ठीक ही है, मैं मेरे को पढ़ने के लिए दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा, ऐसे मेरे को पक्का हो गया था। वैसे फिर बाबा ने जैसे बड़े प्यार से हमारे को बोला कि बच्ची भले तेरे को तेरी दिनचर्या सुनाओ, तेरी दिनचर्या क्या है जयपुर की। तो मैंने बताया बाबा को, बोला बाबा मैं सुबह को 3:30 बजे मुझे बहनी उठाती है, फिर हम लोग लगभग 35-40 भाई बहन होते थे, तो सबका मतलब सुबह सुबह वो पत्थर का कोलसा होता था ना, उस जमाने में वो सिगड़ी जलाते थे, तो वो सिगड़ी जला करके और पानी गर्म करना, नाना वगैरह सबको देना, और फिर क्लास की तैयारी करना, और उसके बाद क्लास करें, फिर नाश्ता, फिर ऐसे सफाई घर की, खाना बनाना, ऐसा सा। हमारे को पढ़ना लिखना तो और काम नहीं आता था, इसलिए बाबा के किचन में सेवा करते थे। तो सारी दिनचर्या सुनाई, बाबा ने बोला, बच्ची तेरे को तो सारे दिन में कोई टाइम नहीं है। फिर बाबा ने बोला, अच्छा बच्ची ऐसे करो कि जब सब सो जावे ना, तब तू रात्रि को बैठना और शिव बाबा तेरे को पढ़ाएंगा। तो मैं बहुत मुंझ गई कि ऐसे कैसे बाबा बोलता है, शिव बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगा। मन ब्रह्मा बाबा आबू में, शिव बाबा ऊपर, और मैं जयपुर में हैं, बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगा। इतने लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की, तभी भी मैं नहीं पढ़ी, तो अभी कैसे पढ़ूंगी। तो बाबा ने मेरे मुंजन, जब मैं मुंज गई, उससे बाबा को पता चल गया होगा। तो बाबा ने तुरंत बोला, बच्ची बाबा पर निश्चय है? बाबा को बोला, बाबा निश्चय है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ, नहीं तो रहूं भी नहीं। तो बाबा ने बोला, बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी निश्चय रखो। मुझे संशय नहीं था, जरा भी संशय नहीं था, पर मैं जरा भी समझ नहीं सकती थी, जरा भी नहीं समझ जाता था, कैसे कैसे ऐसा, बस ये क्वेश्चन हटता ही नहीं था, कैसे हो सकता है, बाबा मधुबन रह जाएगा, मेरे को जयपुर भेज रहे हैं, शिव बाबा ऊपर और वो भी गोल गोल, तो कैसे पढ़ाएंगे बाबा। फिर बाबा ने बड़े प्यार से मुझे समझाया कि बच्ची जयपुर जाओ ना तो कॉपी पेन साथ में रखना, और बच्ची किसी को भी कहना नहीं कि शिव बाबा मुझे पढ़ाने वाले हैं। अगर किसी को भी बोल देंगी ना बच्ची तो सब लोग आएंगे जाएंगे, उठेंगे बैठेंगे, बोलेंगे बात करेंगे, तो तेरे को जो प्राप्ति करनी है ना वो नहीं कर सकेंगी। मैं तो वैसे भी बोलती नहीं थी। फिर बाबा ने जैसे वहां पर भेजा और बाबा ने कहा था कॉपी पेन लेकर के बैठना, तो हम वहां जयपुर में पहुंचे दूसरे दिन सुबह को। सारा दिन अच्छी तरह जैसे मेरी दिनचर्या थी उस अनुसार व्यतीत किया। जयपुर में आनंद किशोर दादा और बलदेव भाई रहते थे, उन लोगों से कागज लिया। दादा ने वो मेरे को लगता है 2-3 आने की वो कॉपी मिलती थी तो वो दी और एक पेंसिल दी दादा को। जैसे मैंने बोला दादा मेरे को कॉपी पेन चाहिए, दादा ने बोला अरे मुट्ठी तेरे को लिखना तो आता नहीं है, तू क्या करेंगी पेन। तो मुझे तो पता भी नहीं पेन और पेंसिल अलग अलग होता है, तो मैंने बोला मुझे चाहिए, तो बोला मेरी इतनी अच्छी ये पेन है जो विदेशी भाई ने दी है, तू ऐसे ऐसे जोर से करेंगी मेरी नींव भी टूट जाएंगी तो मैं तेरे को पेंसिल देता है। भले फिर तो पेंसिल और कॉपी दी, दादा ने बोला लिखना तो आता नहीं करेंगी क्या, चाहिए। फिर रख लिया और जब सब सो गए, मैं भी सोई हुई थी, मेरे को नींद ही नहीं आती थी, और फिर उठ करके दादी के ही ऑफिस में, दादी के ही सामने ऑफिस थी दादी की, तो वहां बैठ गई नीचे और बाबा को याद करने लगी। बहुत संकल्प चलते थे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो मधुबन रह गया, बाबा तो मधुबन रह गया, शिव बाबा तो ऊपर है, मैं यहाँ आ गई हूँ सेंटर पर जयपुर, कैसे बाबा पढ़ाएंगा, कैसे ऐसे कैसे कैसे बहुत करती थी। पर फिर याद आने लगा कि बाबा ने बोला है कि तू शिव बाबा को याद करेंगी ना तो बच्ची तेरे को शिव बाबा पढ़ाएंगे। तो फिर उन संकल्पों को पीछे हटा करके फिर बाबा को याद करने लगी। ऐसे याद करते करते फिर बाबा ने ध्यान में बुलाया और बाबा के पास जब गई वतन में, तो इस ओर से मैं जा रही थी, सामने से बाबा आ रहे थे, तो बाबा ने बोला बच्ची तू तो बहुत चिंता करती थी। बाबा को बोला बाबा आपने बोला था शिव बाबा पढ़ाएंगे, तो बाबा मुझे कैसे पढ़ाएंगे बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची ठीक है, रोज बाबा तेरे को मधुबन से आकर के पढ़ाएंगे, फिर तो पढ़ेंगी ना बच्ची। जी बाबा, मुझे ये समझ नहीं थी कि सूक्ष्म वतन वाले जो बाबा है वो कोई साकार बाबा की संपूर्ण स्टेज है, और वो संपूर्ण स्टेज वतन में बाबा दिखाता है, मुझे ये समझ नहीं था। फिर तो बाबा ने मेरे को लगता है 8-9 दिन तक मैं हर रोज बाबा के पास जाती थी और हर रोज बाबा पढ़ाते थे। जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ऐसे मुझे नहीं पढ़ाया था, मेरे को नहीं कि क्या आप लोग जैसे क ख ग ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं ना, लेकिन बाबा ने सीधा ही लिखाया कि शिव बाबा ऐसे लिखने का, ब्रह्मा बाबा ऐसे लिखने का, मम्मा ऐसे, ज्ञान योग ज्वाइंट अक्षर वो बाबा ने सिखाए। और ऐसे बाद में बाबा ने बोला बच्ची जो नहीं आता था वो बाबा ने सिखा दिया, बाकी आगे जितनी मेहनत करेंगी उतना आगे जा सकती है। ऐसे करके वतन में पढ़ना लिखना सीखा था, बाकी मैं स्कूल में नहीं गई हूँ। और ये जो बाबा ने बोला था कि बच्ची तेरी उम्र छोटी है, तो ये मेरी जन्मपत्री में भी था और बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन हरेक ऐसे बोलते थे कि 25 साल से ज्यादा 5 घंटा भी आगे नहीं जी सकेंगी। तो बाबा ने भी ऐसे ही कहा था, 25 साल भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर सकेंगी, होंगे ही नहीं पूरे, उससे पहले पहले जा सकती है, पर बच्ची हो सकता है, तेरे योग बल से तेरी आयु बढ़ जाए। तो बाबा को हमने बोला, बाबा मैं योग ही नहीं करूंगी। तो बाबा ने बोला, बच्ची क्यों? तब मैंने ये बताया था कि मुझे मना मरने में बहुत इंटरेस्ट है, दूसरा जन्म लूंगी फिर पढ़ूंगी। तो बाबा ने बोला कि हो सकता है योग बल से आयु बढ़ जाए, तो मैंने कोई योग नहीं किया आयु बढ़ाने के लिए। 25 साल मुश्किल पास होने वाले थे, अभी तो डबल से भी काफी डबल हो गया। अभी तक आप सबके बीच में हूँ, अभी तक ऊपर नहीं गई हूँ। बाबा ने वैसे मुझे मरने के चांस तो बहुत मिले, लेकिन फिर भी मैं गई नहीं। वैसे मैं 2 बार नदी में डूबी हूँ, व्यास नदी में। एक बार कुएं में गिर गई थी, फिर एक्सीडेंट भी मेरे बहुत हुए हैं। बस एक्सीडेंट में भी हमारे को काफी चोटें आई थी, काफी फ्रैक्चर हुए थे, पर फिर भी बाबा ने ठीक कर दिया। फिर कार एक्सीडेंट भी अभी 2 साल पहले हमारा हुआ इनोवा में। फिर फर्स्ट फ्लोर से भी मैं गिरी थी, किसी का धक्का लगा था तब। ऐसे मन कितने बनाव बने जो मैं ऊपर जा सकती थी ना, लेकिन बाबा बचा लेता है। काफी बाबा की मदद भी मिलती रही। हम जब ज्ञान में चली, और मेरे घर वाले भी और क्लास वाले भी, कितने लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि कैलाश बहन तुम ज्ञान में चल रही हो वो बहुत अच्छा, लेकिन घर में रह करके ही सेंटर पर जाना, तू सेंटर पर रहने के लिए कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तेरे को कुछ आता नहीं है, तू बोलती नहीं है, तू कुछ भी जानती नहीं है, अनपढ़ हो, क्या करेंगी सेंटर पर जाके? अगर जाएंगी तो कई बार मैंने कहती तू वापस 1-2 महीने में वापस ही आएंगी, तो इससे पहले से यहाँ रहो ना। तो मैं बहुत सोचती थी, मेरे को बहुत दुख भी होता था अंदर, लेकिन किसको तो बोलती नहीं थी। एक बार मैंने अपने जो बाबा के घर में बहनें आती थी, उन बहनों को बोला कि मैं जो लेटर लिखाऊं वो लिखना। मम्मा बाबा को लेटर लिखा कि मेरे को मेरे घर वाले सेंटर वाले सब ये कहते हैं कि आप ज्ञान में नहीं चल सकेंगी। तो बाबा मैं ज्ञान में चल सकूंगी या नहीं चल सकूंगी? तो सेंटर पर रह सकूंगी या नहीं रह सकूंगी? तो बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि बच्ची तुम योग करो और सफलता तेरी परछाई बनके तेरे साथ साथ दौड़ रही है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुश हो गई। और दीदी कहीं जा रही थी, जाते जाते ये लेटर सुना के गई। मैं इतनी खुश, इतनी खुश। जो काम मुझे नहीं आता था वो भी मैं सीखने लगी, बहुत उल्लास मंग। मैं जैसे समर्पण हो गई हूँ, सेंटर पर रहने लग पड़ी हूँ और बहुत कुछ मुझे आ गया, इतनी मेरे को खुशी हो गई। मैं सब काम करने सीखने लगी, झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करने लगी, सेंटर पर ही करती थी पर करने लगी। फिर 15 दिन के बाद दीदी आई, बोला कैलाश बहुत खुश दिखाई देती हो। जी क्यों खुश हुआ? उनका दीदी आपने मम्मा का लेटर सुनाया था ना? अरे बुद्धू, मम्मा ने तो तेरे को खाली खाली खुश करने के लिए बोला था, थोड़ी तो ब्रह्मा कुमारी बन जाएंगी। मेरे को बड़ा धक्का लगा, बड़ा दुख हुआ। मैंने मम्मा ने भी मेरे को ऐसे खाली खाली बोल दिया, तो मैं बहुत सोच में पड़ी। लेकिन फिर वहां से पिताजी चलो घर, घर पे हमारे को वो नदी जो थी ना व्यास नदी, वो क्रॉस करके जाना होता था। तो वहां नदी पर मैं नाव में बैठ करके पार किया और किनारे पर बैठ गई। सबको बोला आप लोग जाओ, मैं योग करूंगी। काफी 11 बजे तक बैठी रही। बाबा तूने मेरे को ज्ञानी क्यों दिया, अपना बनाया ही क्यों? अगर बनाया था तो पढ़ाया क्यों नहीं? ऐसे ऐसे मन बाबा से कुछ झगड़ा करती रही होंगी। 11 बजे भाई लेने आए, चलो घर। नहीं, मुझे यहीं रहना। अरे पिताजी और माता ही बुला रहे, चलो घर। फिर गई, फिर माताजी बोले खाना खा लो। नहीं, मैं बाबा मम्मा को एक लेटर लिखवाती हूँ फिर खाऊंगी। फिर वो बहनों को बुलाया, लेटर लिखाया मम्मा को। मैंने बहुत डिटेल परिचय अपना दिया कि मैं 11 साल की हो चुकी हूँ, 12वां साल शुरू हुआ है, मेरा नाम कैलाश है, मैं हिमाचल प्रदेश की हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। तो मैं बन सकूंगी या नहीं? और मेरी घर वाले बहने भाई ऐसे बोलते हैं कि आप बनेंगी तो 2-3 महीने में वापस ही है आएंगी। तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बाबा आपके घर में सेंटर पर रहूं, उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, क्या प्रयत्न करना है, वो आप मुझे बताना। तो बाबा मम्मा ने लेटर पढ़ करके फिर उत्तर दिया कि जिस दिन आप घर छोड़ करके बाबा के घर आओ, उस दिन उस समय आप ये सोचना कि इस घर के बाद और कोई मेरा घर ही नहीं है, बाबा के सिवाय और कोई है ही नहीं, बस सब कुछ मेरा बाबा और बाबा के बच्चे, बाबा का परिवार, दीदियां दादियां बस। और दूसरा बताया कि कभी भी इधर की बात उधर नहीं करना। फिर बाबा ने मम्मा ने लिखा था कि बच्ची तेरे को जहां बाबा रखेगा वहां रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मैं यहाँ रही तो यहीं रहूंगी, बाबा कहीं भी भेजेगा तो वहां जाना पड़ेगा। फिर बाबा मम्मा ने लिखा था कि जिस स्थान पर भेजे वहां जाना पड़ेगा, जिसके साथ रखे उसके साथ रहना पड़ेगा, जहां रखे जिस घर में परिवार में रखे जहां भी रखे वहां तेरे को सबके साथ सेट होकर के रहना है, तेरे ध्यान कोई नहीं रखेगा, तेरे को सबका ध्यान रखना है। और बच्ची बाबा के घर आने के बाद आप ऐसा सोचना कि बस जैसे मैं जीती आई हूँ इस घर में, मरने के बाद मेरी अर्थी जाएंगी, मैं नहीं। बस वो बोल मेरे को इतने अच्छे पक्के हो गए, इतने अच्छे याद हो गए कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आती थी मुझे तुरंत मम्मा बाबा का वो लेटर सामने आता था। और दूसरा, हमारे पिताजी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक तो 6 फुट से ज्यादा उसकी, समझो 5-6 इंच उसकी हाइट थी, और उसका इतना अच्छा गला था कि माइक देने की जरूरत नहीं थी। और उनका स्वभाव ऐसा था कि अगर हमारे को गुस्सा करना हो तो वो अंदर बैठे हुए हो ना तो बाहर खड़े हो जाएंगे और फिर बोलेंगे ताकि पूरा गांव सुन सके। तो जब मैंने 12 साल की थी और सेंटर पर आने के लिए निकली तो पिताजी को बोल करके निकल रही थी, तो पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को बोला, कलश बेन अभी आप छोटी हो, यहीं रहो, यहां से बाबा के घर जाओ, बड़ी हो करके तू भले सेंटर पर चली जाना लेकिन अभी नहीं जाओ, अभी तेरे को दुनिया का कुछ पता नहीं है। नहीं पिताजी मैं जाऊंगी, कलशवेन दुनिया क्या चीज है वो थोड़ा समझ कर फिर जाओ। पिताजी को बोला, पिताजी मैं समझ गई, इतनी छोटी उस जमाने में तो जरा भी समझते नहीं थे कोई लोग, मैं क्या समझूंगी, मैं तो वैसे भी अभी तक नहीं समझती हूँ। तो फिर पिताजी ने बोला, नहीं तू मेरा नाम खराब नहीं करना, अभी तुम छोटी हो, तेरे को नहीं पता है कोई भी बात का, संसार क्या चीज है वो तो जो कुछ पता नहीं है, तू मेरा नाम खराब नहीं करना, बाबा का नाम खराब नहीं करना, श्री बाबा का नाम खराब नहीं करना। मैंने कहा हाँ पिताजी मैं नहीं करूंगी, मैं पूरा ही पूरा ध्यान रखूंगी। लेकिन उस समय तो 12वां साल ही चालू हुआ था, हाँ हाँ कर करके पिताजी से थोड़े समय के लिए छुट्टी लेकर के मना मैं आने के लिए बोला। पिताजी ने बोला, नहीं कैलाश बहन अभी नहीं जाओ। मैंने पिताजी को बोला, पिताजी मैं पंजाब के सेंटर देख के आती हूँ, तो हमारे ही वहाँ की बहन एक समर्पण होने जा रही थी और उसकी मम्मी उसको छोड़ने जा रही थी, तो मैंने बोला मैं भी पिताजी वहाँ के सेंटर देख करके आ जाऊंगी। बोला भले, तो मैंने पहले से सामान सेंटर पर भेज दिया थैला भर करके, और एक थैला मैंने मेरे पास रखा और माता जी को बोला कि मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, तेरे को जो जो चीजें देनी है वो दे दे। और पिताजी को बोला मैं 3-4 दिन में वापस आऊंगी, चली गए। फिर जो बहन मेरे को लेके गई उसको पता था मैं 3-4 दिन में वापस आने वाली हूँ, लेकिन उसने उसकी लड़की को अम्बरसर छोड़ा और मेरे को होशियारपुर छोड़ा। लेकिन जब वो अम्बरसर से वापस आने वाली थी तो उनके भाई ने सरी छोड़ा, तो अम्बरसर से सीधी वो हिमाचल चली गई, मेरे को लेना रह गया। तो मेरे को सुबह को बहने बोल देती थी, कैलाश इतने बजे उठने का, सिगड़ी जलाने की, पानी गर्म करने का और कपड़े भगोने के, क्लास की तैयारी कर देने की, क्लास करने का और फिर नाश्ता बनाने का, जो जो काम बतावे वो करने का, अगर ड्रामा अनुसार दीदी भूल गई तो ओम शांति, फिर मेरी बुद्धि नहीं चलाऊंगी कि मैं अपने आप झाड़ू लगा लूं या कपड़े धुलाई कर लूं, नहीं दीदी को बोलना पड़े। ऐसे ऐसे करके हम मना वहां पर रह गई। हमारे को 1.5 महीना हुआ रहती को, तो बहनों को याद है, अरे ये बहन गई नहीं अभी तक, इसको तो 3-4 दिन में चले जाना था। तो मना दीदी को बोले तो बोला कि अरे चुपचाप काम करती है, बोलती नहीं है, कुछ नहीं, अच्छी तरह सेवा कर रही है, तो भले न करती, ऐसी बच्ची कहाँ मिलेंगी हमें। मीन्स बहुत बोला स्वभाव था, बोलापन बहुत मार खिलाता है, बोलापन से बहुत सहन भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाबा मम्मा का बहुत 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 मदद मिली। हम एक बार जब शुरू में हिमाचल में थी हमीरपुर सेंटर पर, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, चंद्रमणि दादी आने वाले थे, तो हम लोग सब तैयारियां कर रहे थे। मेरे को भी मेरी दीदी ने बोला कि जाओ कैलाश बहन, फटाफट झाड़ू पोछा करके आओ हॉल में। तो मैं छोटी ही थी, 11 साल की थी उस समय, 11-12 साल की। तो मैं जैसे हॉल में गई तो देखा वहां पर चित्र जो त्रिमूर्ति और झाड़ होता है लक्ष्मी नारायण, उस समय पहले उसमें लिखत होती थी बहुत। तो मैं ना वो देखती रही, काफी समय तक देखती रहूंगी क्या पता। तो मैं ऐसे देखती रही कि ये कितना अच्छा, सब दिखाई तो मुझे देता ही है, तो मुझे पढ़ना क्यों नहीं आता है, सब लोग पढ़ लेते हैं, वो कैसे पढ़ लेते होंगे, उनको भी दिखाई देता है मुझे भी देता है, तो क्यों वो लोग पढ़ लेते हैं, एक ही जैसा सब लोग पढ़ते हैं। तो मैं ऐसे सोच में मन ऐसे बाबा को भी याद कर रही थी कि बाबा आपने क्यों मुझे कैसे नहीं आता है पढ़ना, ये लोग कैसे देखते, दिखाई तो मुझे अच्छी तरह देता है। तो ऐसा सोचती सोचती बाबा बाबा याद करते करते बाबा ने बर्तन में बुलाया, हाथ में ऐसे झाड़ू रखा हुआ था गोद में और ऐसे बैठी हुई, और बाबा को वो झाड़ चित्र को देखते देखते चली गई बाबा के पास। और जब मैं ऊपर चली गई होंगी तो मेरी दीदी मुझे देखने आई कि सफाई हुई या नहीं। तो मैं तो बैठी हुई थी और वो बाबा के पास होंगी तो दीदी मना वहां दरवाजे पर खड़ी रही और देखती रही। फिर जब मैं वापस आई तो तुरंत तो नीचे एकदम बहन में नहीं आ जाते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देखा दीदी को तो एकदम आश्चर्य में पड़ी। दीदी ने बोला बाबा के पास गई थी। जी दीदी, क्यों? तेरे को झाड़ू पोछा लगाने के लिए भेजा, तू बाबा के पास चली गई? पता नहीं दीदी, बाबा ने बुला लिया। तो क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने सबको बहुत बहुत याद दी और कहा है कि जो किचन में काम कर रहे हैं उनको भी याद देना, और उनके लिए कहा है कि बाबा की याद में काम करना, अगर बाबा की याद में काम नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो दीदी ने बोला चल चल जल्दी झाड़ू पोछा लगाओ, दादी आने वाली है। तो भले, तो मैं फिर से फटाफट मन सफाई करने लगी। और दीदी को भी इतना ध्यान नहीं, छोटी थी तो भाई ये थोड़ी क्या है, ये तो थोड़ा ऐसे चली गई होंगी, ऐसा बहुत कोई ध्यान पर नहीं लिया। इतने में क्या हुआ कि जो खाना बना रहे थे तो चने की दाल भुगोई हुई थी डोल में, तो नहीं वो फूल करके ऊपर आ जाती है ना, तो ऐसे फूल करके ऊपर आ गई होंगी। जो खाना बनाने वाली थी उसको पता नहीं था, उसने समझा ये डोल भर करके दाल की रखी हुई है। और जैसे कढ़ाई वो तेल की गर्म थी और उसने ऐसे करके वो डाल दिया, तो उसमें नीचे पानी था एकदम भड़का हुआ, और घास की झोंपड़ी बनाई हुई थी, आग लगी। फिर तो तुरंत मना सब लोगों ने बुझाया, मींस वैसे वो जो गेहूं वो पहली दाल डाली तो उसके साथ जो पानी पड़ा तो कईयों के पांव भी जले, हाथ जले, यहाँ यहाँ से बाल जले, ऐसे ऐसे कर करके, लेकिन बाबा ने बचा लिया। और फिर दोपहर को जब बहने भोग लेकर के गई, उस समय बहन को बताया बाबा आज बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर भी लेकिन बाबा बच गए सब। तो बाबा ने बोला बाबा ने तो बच्चों को सावधान किया था, बाबा ने तो बच्ची द्वारा मैसेज दिया था। तो उन्होंने बोला बाबा ये माना हमने समझा ये छोटी बच्ची है, क्या खेलती होगी ऐसे ही। तो बोला बच्ची, मीन्स बच्ची छोटी थी लेकिन संदेश देने वाला बाबा तो छोटा नहीं था ना बच्ची। और अभी भी हमारे को जो हिमाचल जाना हुआ, मुझे भी मालूम नहीं था। वैसे तो हमारे लौकिक में चाचा जी ने भी शरीर छोड़ा था, लेकिन एक दूसरे भाई ने जो शरीर छोड़ा, तो वो तो हमारे को बिल्कुल जानते नहीं थे, पर उन्होंने बुलाया और मेरे को भी फिर हमारे संबंधियों ने बोला कि दीदी आएंगी तो बहुत अच्छी सेवा हो जाएंगी, बहुत अच्छा परिवार है, आप आओ। और उम्र भी उसकी छोटी थी, तो फिर मैं गई उनके पास मिलने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आपने अहमदाबाद में भोग लगाया था, तो वो हमारे संबंधी होते हैं। और उन्होंने बताया कि कैलाश बहन हैं, तो उन्होंने हमारे बच्चे का भी भोग लगाया था, तो आप भी अपने भाई का भोग लगवाओ। मैंने बोला मैं तो पहले भोग लगाती थी, अभी तो बहुत सालों से बंद कर दिया है। तो के दीदी आप बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब का लाए थे, इसलिए उन्होंने बताया, तो इसलिए हमने आपको बुलाया है। अहमदाबाद में एक भाई था, 30-32 साल का था, तो वो एक्सीडेंट में मर गया था। बाइक पर था भाई और सामने ट्रक थी, ट्रक रॉन्ग साइड क्रॉस किया, इसलिए वो भाई ने शरीर छोड़ दिया उसी सेकंड। तो उसके घर में जो बैठने जाते हैं, तो हमारे भी कोई परिवार वाले गए हुए थे, तो उस समय उन लोगों ने बहुत रोना पीटना शुरू किया, तो उनको बहुत दुख हो रहा था। तो जो हमारा यहाँ अहमदाबाद में एक भाई था, उसको बहुत रहम पड़ा और उसने बोला भाई इतना रो रहे हैं, बोला मेरा बच्चा मर गया, छोटा था, 32 साल का था, अभी वो आत्मा कहाँ भटक रही होंगी या भूत प्रेत बनी होंगी, क्या हुआ होगा। तो बेचारे भाई से नहीं रहा गया, उसने बोला ऐसा करो आप रो नहीं, और हमारी संस्था में, ब्रह्मा कुमारी संस्था में भगवान को भी भोग लगाते हैं, और आपके जो बच्चा है उस आत्मा को भी भोग लगाएंगे, तो मैं दीदी को बोलूंगा कि वो भोग लगावे। तो उसने उन्होंने परिवार वालों ने बोला कि आपको जो करना पड़े वो करो, पर मेरे बच्चे को भी जानो कहाँ है, भटक रहे हैं या क्या, किस स्थिति में है, और भगवान को भी भोग धराओ। फिर माना उन्होंने बोला, शारदा बहन हमारे जो यहाँ कई बार स्टेज पर आप देखते होंगे, अहमदाबाद वाली शारदा बहन, तो उसको उसके पास वो भाई जाता था, तो बोला शारदा बहन आप हमारे बच्चे का वो मना भोग लगवाओ। ऐसे बोला कोई ज्ञान में चलता है कि ना, बच्चा चलता था ना, कोई संबंधी आता है ना, बोला हम भोग नहीं लगा सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो सरला दीदी से पूछो, तो दीदी को फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, और बाबा को भोग लगाओ, सातमा को भी लगाओ, और जानना है कि वो आत्मा कहाँ है। दीदी ने भी बोला भाई ज्ञान में नहीं, कोई नहीं चलता है तो क्या बाबा बाबा समझेंगे, पता ही नहीं चलेगा, तो मना हम लोग नहीं भोग लगा सकते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है चलो ऐसा करो, आप कैलाश बहन को बोलो बाबा से पूछे, अगर बाबा हाँ करेगा तो लगाएंगे, बाबा मना करेगा तो नहीं लगाएंगे। तो दीदी ने हमारे को भी फोन किया कि कैलाश बहन ऐसे से ये पोपट भाई भोग लगाने का बोलता है, तो बाबा से पूछने के लिए, तो आप पूछ के आओ। हमने दीदी को बोला दीदी पता तो है, जब वो कोई ज्ञान में नहीं चलते हैं तो फिर नहीं भोग लगाते हैं ना दीदी, तो आप मना कर दो। अरे बोला मैंने सबको मना कर दिया, अभी तुम पूछ के आओ, इतना बड़ा अनन्य भाई है। तो फिर मुझे जाना पड़ा, मैं बाबा के पास गई, बाबा को बोला बाबा एक ऐसा भाई ने शरीर छोड़ा है, उसके संबंधी बोलते हैं कि आप बाबा को भोग लगाओ और उस आत्माओं को भी याद देना, वो कहाँ है, कैसी है, वो पूछ के आओ। तो बाबा क्या करें, बाबा ने बोला बच्ची भले भोग लगाओ। बाबा को बोला बाबा हम सब ने मना किया, शारदा बहन ने भी, सरला दीदी ने भी, हमने भी। बाबा ने बोला बच्ची भले भोग लगाओ, उसमें भी कुछ कल्याण है, उसमें भी मना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा होंगी बच्ची, आप भले भोग लगाओ। बाबा को बोला पर बाबा हम लोगों ने मना कर दिया है। बाबा ने बोला नहीं बच्ची, बाबा बोल रहे हैं ना, बोले। फिर बोलना पड़ा उन लोगों को कि भाई बाबा ने हाँ किया है, कि इसीलिए मैं कहता था आप बहने मना करती है, बाबा से पूछ लो। फिर भोग लगाया। जब हम भोग लगाने के लिए गए तो बहन सब कुछ सुनता रहा भाई, एक भी उत्तर नहीं दिया। फिर लास्ट हमने बोला भैया आपके घर से खाना भी आया है, तो खाना देखा, खाना खाया और फिर बोला बहन जी जब आप दूसरी बार आएंगी ना तब मैं इन सब बातों का जवाब दूंगा। हमने बोला मुसीबतों से तो भी आई, कितने लोगों ने तो मना किया और कितनी मेहनत से बाबा ने हाँ किया और अभी आई। अरे ये भाई तो बोलता दूसरी बार जब आएंगी तब मैं जवाब दूंगा। फिर नीचे आए, बाबा को, बाबा का इतना ही जो उसका ने बोला था वो सुना दिया। फिर उसका बड़ा भाई खड़ा हुआ और उसने बोला बहन जी उसका ये स्वभाव था, तुरंत का तुरंत वो उत्तर नहीं देता था। हम बोले मेरे को दिल्ली जी घूमने जाना है, तो भैया आप चलेंगे, तो वो तुरंत हाँ नहीं करेगा, बोलेंगे मैं एक दो दिन में सोच करके बोलूंगा। तो बोला मरने के बाद भी उसने वही काम किया, भैया मुझे तो पता नहीं। फिर दो तीन दिन के बाद फिर से भोग रखा। फिर जब भोग लेकर के गई तो उसने बोला दीदी ओम शांति, आइए आइए, बड़े जैसे वो वर्षों से जानता हो ऐसे ढंग से बुलाया उसने। उस दिन पहले दिन तो बोला ही नहीं, फिर बोला कैसे हैं सब, ठीक हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं सब लोग, आपके भाई भाभियां, बच्चे, पत्नी, मम्मी पापा सब बहुत याद कर रहे हैं। मम्मी पापा ने पूछा है कि कोई भी इच्छा हो, कुछ बोलने का रह गया हो तो मेरे बेटे को बोलना, बोले हम जितना बन सके आपके इच्छाओं को पूरी करेंगे। उन्होंने, और फिर मैंने ये भी पूछा कि आप हमारी संस्था को जानते हैं, उसने बोला हाँ मैं जानता हूँ, आपकी संस्था मणिनगर में भी है और मैं वहाँ प्रदर्शनी देखी हुई है और बहुत अच्छी तरह से मुझे परिचय है आपकी संस्था का और कोर्स भी किया हुआ है। और मैंने जब शादी की थी तो आबू का म्यूजियम भी देखा था, वहाँ शिविर की थी और मैं आपकी संस्था को अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। फिर हमने बोला आपके मम्मी पापा परिवार वालों को क्या बोलना है, बहुत अच्छा उसने संदेश दिया था। लेकिन लास्ट उसने बोला कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी मम्मी ने बोला है कोई इच्छा होवे तो पूरी करूँगी, तो वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है, मुझे मेरे मम्मी पापा की इस समय सेवा करनी चाहिए थी लेकिन मैं आ गया। और मेरा जब एक्सीडेंट हुआ, मैं वैसे पैसे देने जा रहा था, मुझे किसी के 40,000 रुपया देना था, वो जेब में था, वो पुलिस वालों ने निकाल लिया है, दिया नहीं है, तो मम्मी को बोलना वो पैसे दे देवे। और दूसरा, मैं एक जमीन ली थी अंबाजी में, जो मीन्स मेरे परिवार वालों को कोई को भी पता नहीं है, परंतु मेरा एक फ्रेंड जानता है, उसको पता है, उसी के पास कागज है, तो वो मना आपको बताएगा। तो हमने बोला लेकिन हम आपके फ्रेंड को नहीं जानते हैं, वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, तो हम कैसे। तो उसने बोला कि मुझे एक इच्छा है कि वो जो मेरे को करना था वो तो मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरे को ऐसी दिल है कि वो जो जगह मैंने ली है उस पर अगर बाबा का घर बने, सेंटर बने और सेवा हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और तो मेरे मम्मी पापा को बोलना मेरे ये संकल्प को पूरा करें। तो भले, तो भैया आपके फ्रेंड का कैसे पता चले। तो बोला वो अभी घर से निकल करके ऑफिस जा रहा है, आपके सेंटर के नजदीक में है, वहां से प्रसार होता है, तो मैं उसको सेंटर पर भेज रहा हूँ, जब तक आप जाएंगी तब तक वो पहुंच जाएगा। भले, तो फिर हम बाबा से उनको भोग भोग खिला करके वतन से नीचे आई, बाबा का संदेश सुना रहे थे। जब संदेश सुना करके पूरा किया तो एक भाई खड़ा हुआ और उसने बोला कि दीदी जो आपने बताया ना कि जो जिसने शरीर छोड़ दिया है उसका मैं फ्रेंड हूँ, और वो जो जमीन है तो उसने भी ली है, मैंने भी ली है, साथ साथ में ही प्लॉट है, लेकिन उसने मेरे को मना किया था कि किसी को बताना नहीं जब तक मैं ना बोलूं। तो आपको तो पता नहीं था, पर आपके थ्रू उसने बोला है तो वो कागज वगैरह सब मेरे ही पास है, और मैं मम्मी पापा को दे दूंगा ऑफिस से आकर के, और मैं ही उसका फ्रेंड हूँ, तो मेरे पास सब कुछ है। तो फिर उसके माँ बाप खड़े हुए और बोला मेरे बच्चे की इच्छा है कि उस प्लॉट पर बाबा का घर बने, तो मेरे बच्चे का लास्ट संकल्प जो है, सरला दीदी को बोला दीदी आप पूरा करना। भले, हम तो ढूंढ ढूंढ के मर गए, सारा अंबाजी एक एक घर और एक एक होटल से पूछ पूछ करके थक गए कि आपको बेचना है, आपको बेचना है। और दीदियां के दीदी कई बार हमारे को बोलती जाओ तुम बाबा से पूछ के आओ कि अंबाजी में जगह मिलेंगी या नहीं। तो बाबा बोलते थे बच्ची समय आने पर सामने से मिलेंगी। तो हम लोग बोल देते थे समय आने पर, दीदी कहते हैं बाबा की मिल जाएंगी, दीदी के तुम लोग संदेशियां पूरा संदेश नहीं लाती हो। मैं अगर संदेशी होती तो मैं पूछ के आती थी कौन सा प्लॉट है, कौन सा मकान है, कब मिलेगा, कौन सी तारीख को मिलेगा, तो क्या मैं अच्छी तरह पूछती थी। तुम लोग जितना बाबा बोलते चुपचाप आ जाती हो, तो मेरे को इतना ही बताया है। लेकिन बहुत बार पूछा था तो वो सामने से प्लॉट मिला। अब भी जो अंबाजी सेंटर है वो उसी ही जगह पर है जो जगह उस भाई ने बताई थी। तो उस भाई को हमारा कुछ पता चला होगा तो बोला दीदी आप भोग लगाओ। उन्होंने बोला मैंने बहुत सालों से छोड़ दिया है, नहीं लगाती हूँ, बाकी मैं योग करूंगी उस आत्मा के लिए, अगर जब भी लगाना शुरू करूंगी तो मैं जरूर सबका ही लगवाऊंगी, जिसका जो संदेश होगा पूछूंगी, पर अभी दादी ने मुझे मना किया है तो मैं नहीं जाती हूँ। तो के भले, इसलिए हिमाचल में बुलाया था। ओम शांति। बहुत अच्छा, आप सभी जरूर से गांधीनगर आए। हमारी विजया बहन ने, उषा बहन ने और बहुत अच्छी तरह से हमें ये चांस दिया आप सब से मिलने का। आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।
थैंक्स तो दीदी, हम सब मिलकर आपका करते हैं। बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बोलो थैंक यू बाबा थैंक यू, बोलो थैंक यू वेरी मच। अभी हम अच्छी तरह से थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं, अपने ही प्लेस पे खड़े हो जाएंगे। डॉल बन जाएंगे, जापानी डॉल। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। अच्छी तरह से घूमिए ना, ये एक्सरसाइज भी हो रही है, चेंज भी लग रहा है जी। मेरा, देखिए दो हाथ जोड़ दीजिए, दो हाथ। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा अभी हम सबके बीच आदरणीय राजू भाई, आप भी बहुत गहन तपस्या के अनुभवी आत्मा हैं, तो हम सबके बीच में मिलेंगे। इससे पहले हम थोड़ा फ्रेश होके फिर यहीं पर, अभी जिनको बहुत जरूरी है वो ही चलेंगे, बाकी हम सब यहाँ ही बैठेंगे।
ओम शांति। अभी एक मिनट का गीत बजेगा जो दीदी को मम्मा ने भेजा था, तो वो गीत बजेगा।
झूठ का दीप कभी ना जलता, सच की ज्योत अमर है, तेरे मन में खोट नहीं तो तुझको किसका डर है। सांच को आंच नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे, सदा सच बोल अरे इंसान, के सच को ही कहते भगवान। सांच को आंच नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे, सदा सच बोल अरे इंसान, के सच को ही कहते भगवान। सांच को आंच नहीं प्यारे, पर्वत को ना हटते देखा, दरिया को ना रुकते, पर्वत को ना हटते देखा, दरिया को ना रुकते, जो सच्चे हैं उनको हमने कभी ना देखा झुकते। तू भी सच का रख ले मान, के सच को ही कहते भगवान। सांच को आंच नहीं प्यारे, कोई फिर हिम्मत क्यों हारे। रात हो कितनी लंबी फिर भी सूरज तो आएगा, सूरज तो आएगा, आखिर जीत तो होगी सच की, झूठ न फल पाएगा। कह गए बात ये लोग महा के, सच को ही कहते भगवान, नाच तो आज नहीं जाने कोई, फिर हिम्मत क्यों हारे। आए जिन्हें दुख सहना, वो ही सुख पाते हैं जग में, आए जिन्हें दुख सहना। सीख लो तू फूलों से कांटों में भी हंसते रहना, सच्चा रास्ता तू पहचान, के सच को ही कहते भगवान, नाच तो आँख नहीं प्यारे कोई, फिर हिम्मत क्यों हारे। सदा सच बोल अरे इंसान, के सच को ही कहते भगवान, नाच तो आँख नहीं प्यारे।